हरे कृष्णा। आज का जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान है कौन। इस जगत में लोग प्रायः मानते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम गॉड का भजन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि गॉड है कौन। जैसे मैं यहाँ पे हूँ या आप लोग वहाँ पे हैं, तो निश्चित सी बात है कि आपके माता पिता तो हैं, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन वो कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? अगर हम नहीं जानेंगे कि हमारे माता पिता कौन हैं, तो हमें कोई भी बरगला सकता है कि तथाकथित व्यक्ति तुम्हारे माता पिता हैं, और हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो आजकल के समाज में कोई कहता है साईं बाबा भगवान हैं, कोई कहता है ये बाबा भगवान हैं, कोई कहता है राम रहीम भगवान है, ऐसे बहुत सारे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग व्यक्तियों को भगवान मानते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि भगवान की परिभाषा है क्या। ये विष्णु पुराण के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय के 47वां श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यो यश्चैव षणां भग इति गणा। ये पराशर मुनि इनके द्वारा ये कृत रचना है विष्णु पुराण, जो स्वयं वेद व्यास जी यानी कि जो भगवान के वांग्मय अवतार हैं उनके पिता हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो अपना मतामत दे रहे हो, वो महान ऋषि हैं और वह भगवान की परिभाषा दे रहे हैं। और उनके अनुसार वो कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, अर्थात जिनके पास पूर्ण बल हो, यश हो, धन हो, ज्ञान हो, सौंदर्य हो और वैराग्य हो। याद हुआ? बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। तो अब आप किसी भी व्यक्ति को इस जगत में देखिए, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उसके पास वो इस सारे ऐश्वर्य, सारे जो 6 ऐश्वर्य हैं वह असीमित मात्रा में हैं, तभी उसको भगवान के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। और अगर आंख मूंद करके हम अपने गुरुजी को भगवान बोल रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को भगवान बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो एक इसमें बात ध्यान देने वाली है कि पूर्ण बल का अर्थ क्या है, अर्थात या पूर्ण यश का अर्थ क्या है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान का बल कभी रहा हो और अब समाप्त हो गया है, या कभी नहीं रहा हो और उन्हें तप करके उसको प्राप्त किया है। शाश्वत रूप से हर समय भगवान इन 6 ऐश्वर्यों से सर्वदा सर्वथा युक्त रहते, हमेशा हर परिस्थिति में भगवान इन 6 गुणों से युक्त रहते हैं। जैसे ऐसा कोई समय नहीं होगा कि सूर्य ठंडा हुआ जा रहा है, वो अशेष तेज से युक्त हैं, हमेशा ही सूर्य के संग उनका तेज रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसमें सौंदर्य समाप्त हो रहा है, और अगर वो भूल रहा है कुछ चीज़ें तो उसमें ज्ञान समाप्त हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में ये नहीं कह सकता है कि सारा बल, सारा यश, सारा धन, सारा ज्ञान, सारा सौंदर्य और वैराग्य उनके ही पास है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे पास कुछ रहता है तो हम लोगों के लिए आकर्षक हो जाते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, रोचक बात है कि केवल इन 6 गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति हमें आकर्षक लगता है। भगवान स्वाभाविक रूप से सभी के लिए आकर्षक होने चाहिए, सर्व आकर्षक। तो अगर वह इन 6 गुणों से पूरी तरह से युक्त हैं तो स्वाभाविक रूप से वह हमारे आकर्षण के केंद्र होने चाहिए। तो हम अब आज चर्चा करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या भगवान कृष्ण भगवान के इन मानकों के ऊपर सही उतरते हैं या नहीं। शास्त्र के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो क्या ये माना जा सकता है कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, या हम केवल भावुकता में इसको स्वीकार कर लें। तो पहला ऐश्वर्य है धन का।
इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं, परंतु उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भंडार है, और न ही कोई यह दावा कर सकता है कि उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन भागवतम में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनकी 16,000 रानियां थी, 16,108 रानियां थी, और उन सबके जो महल थे वो संगमरमर से बने हुए थे और रत्नों से जड़े हुए थे। कमरों में हाथी दांत और स्वर्ण से बना फर्नीचर था और अतुल वैभव स्थान स्थान पर बिखरा पड़ा था। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ है, उसमें आता है लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। संभ्रम का अर्थ है डर के। हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा डर के कर रही हैं कि उनकी सेवा में कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कृष्ण उनको सेवा से हटा तो नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस जगत में लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष की इच्छा रहती है कि थोड़ी सी दया हो जाए लक्ष्मी जी की, और लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, कहते हैं माता जी मुझे थोड़ा धन दे दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं सुखी हो जाऊं। तो ऐसी एक लक्ष्मी के पीछे पूरा विश्व है, और ऐसी हजारों हजारों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं संभ्रम के संग। तो यहां पे हम सोचते हैं कि लक्ष्मी चले न जाएं, परंतु वहां पे वो लक्ष्मी जी सोचते हैं कि कृष्ण कहीं चले न जाएं। अपितु शास्त्रों का वर्णन है 8वें स्कंद श्रीमद् भागवतम से कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करता है, भगवान विष्णु की सेवा करता है, लक्ष्मी जी क्योंकि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर रहती हैं एक रुमावली के रूप में, तो सहज रूप से कोई व्यक्ति अगर भगवान के सामने आता है तो भगवान लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है और वह समृद्धशाली हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के समान धन की धन में कोई कह सकते हैं उनके बराबर नहीं हो सकता है, ना हुआ है और ना होगा। अपितु भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है वो उनका ही है। अगर उस दृष्टि से कहा जाए, समझा जाए, तो जो भी धन हम देखते हैं वो सब कुछ भगवान का है। तो कितना अतुलनीय वैभव भगवान कृष्ण का है, तो इसलिए हम आंख मूंद करके कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरा गुण है बल का। आप देख सकते हैं कि जब भगवान यहां पे आए थे और 3 माह के शिशु मात्र थे, तब उन्होंने पूतना का वध किया था जो 12 किलोमीटर लंबी राक्षसी थी, और उसको मारने के लिए उन्हें कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ा, केवल होठ से उसके प्राण चूस करके भगवान ने उसको मार दिया। उसी प्रकार से भगवान ने अघासुर, बकासुर, शकटासुर इत्यादि बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों का वध किया बिना किसी प्रयास के। ऐसा नहीं कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ी उसके लिए, या फिर गोवर्धन को उठा लिया था। अगर आप गोवर्धन के बारे में जानते हैं, गोवर्धन जी के दर्शन किए हों, तो कितना विशाल पर्वत है, और उस समय वो और अधिक विशाल थे। तो ऐसे गोवर्धन को उन्हें ऐसे उठा लिया था जैसे कुकुरमुत्ते को छोटा बच्चा उठा लेता है, वो भी बाएं हाथ की उंगली पे। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को कोई वेट लिफ्टिंग का अभ्यास नहीं करना पड़ा। तो ये हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भगवान में कितना बल है। भगवान गीता में तो बोलते ही कि सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं उनको भगवान अपनी शक्ति इच्छा मात्र से उठाए हुए हैं। तो बल में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है भगवान श्री कृष्ण की, असीमित बल है। तीसरा पॉइंट है यश का। भगवान श्री कृष्ण का यश भी असीम है। तो कहेगा नहीं नहीं आप लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं इसलिए आप उनका यश गान करते हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता, अगर हम केवल इस पृथ्वी की बात करें, पूरे विश्व में भगवद गीता पढ़ी जाती है और लोग भगवान कृष्ण से परिचित हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों से हम सुनते हैं विभिन्न वर्ष हैं, इलावर्त वर्ष और अन्य वर्ष, वहाँ पे भगवान की पूजा होती है, और देवता लोग भी भगवान को जानते हैं, असुर भी भगवान को जानते हैं। वो अलग बात है कि असुर लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान हैं, लेकिन वह उनकी आज्ञा पालन करने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन जानते जरूर हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। ये तो केवल इंसानों में ही इस प्रकार का ज्ञान है कि वह नहीं जानते कि भगवान कौन है। सौंदर्य की बात करें तो जब भगवान श्री कृष्ण यहां पर अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपना अतुलनीय सौंदर्य प्रकट किया। ब्रह्म संहिता में आता है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान कृष्ण की शोभा करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। इसका अनुभव भक्त तब कर पाता है जब उसके हृदय में प्रेम होता है। तो भगवान की सुंदरता करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक है। वह बहुत सुंदर सुंदर, उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है, वे एक नए बादल के समान है, और उनका जो सुंदर रूप है उसका वर्णन बार बार शास्त्रों में आया है, अतुलनीय सुंदरता है। अपितु जब भक्त लोग उनको देखते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं, तो केवल देखते नहीं हैं बल्कि आंखों से उनके सुंदर रूप को पी रहे होते हैं। बहुत सुंदर उनके रूप का वर्णन है, जैसे भगवान विष्णु के रूप में उनकी चार भुजाएं हैं, इसमें गदा, शंख, चक्र, कमल, पुष्प इत्यादि वो धारण करते हैं। छाती पर उनके स्वर्ण रेखाओं का निशान है जो लक्ष्मी जी को दिखाता है, लक्ष्मी जी के होता है, और उनके जो स्तनाग्र हैं वह कमल पुष्प चक्र के समान प्रतीत होते हैं। अपितु जब कवि लोग कमल से भगवान की आंखों की, चरणों की और हाथों की उपमा देते हैं, तो ये एक शाखा चंद्र न्याय मात्र है, अर्थात एक अंदाजा दिया जाता है कि भगवान का नेत्र कितने सुंदर होंगे। अपितु इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना, जिसकी उपमा दे करके भगवान की सुंदरता को समझाया जा सकता है। इस संबंध में एक भक्त लोग कहते हैं कि जब कवि लोग भगवान की उपमा, भगवान के सुंदर रूप की उपमा इस जगत की वस्तुओं से देते हैं, और जब उन्हें भगवान का साक्षात्कार वापस होता है वास्तविक रूप से, तो वह अपने को धिक्कारते हैं कि अरे हमसे तो अपराध हो गया, भगवान इतने सुंदर हैं और हमने इनकी उपमा चंद्रमा से दी है या कमल से दी है। कमल तो कीचड़ में उगता है और जो चंद्रमा है वह तो गुरु पत्नीगामी है और उसमें धब्बे हैं, और हम कहाँ इसकी उपमा भगवान कृष्ण के सुंदर रूप से कर रहे थे। तो इस जगत के कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी उपमा भगवान कृष्ण के गुणों से या भगवान कृष्ण के सौंदर्य से की जा सके। लेकिन अब काम चलाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए इस प्रकार की उपमा दी जाती है। पांचवा है ज्ञान। कोई भी व्यक्ति केवल सुंदरता के कारण ही नहीं, अपितु अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षित होता है। आप देख सकते हैं कोई वैज्ञानिक और दार्शनिक, भले ही वो बहुत सुंदर नहीं दिखे, लेकिन अगर वो ज्ञानवान होते हैं तो बहुत आकर्षक होते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं पूरे विश्व में भगवद गीता के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया गया। बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, वह भी आइंस्टीन तक भगवद गीता पढ़ते थे और उसके ज्ञान को उन्हें स्वीकार किया। और आज भी आप देख सकते हैं कि वो 45 मिनट में जो भगवान ने बोल दिया अपने मित्र को समझाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा शास्त्र हो गया। ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है कि युद्ध होने वाला है और अपने मित्र को उसने 45 मिनट समझाया तो उतने में ही वो एक शास्त्र बन गया जो सभी ऋषि मुनियों के द्वारा प्रशंसनीय है और पढ़ा जाता है। मूर्ख लोग तो खैर नहीं जानते, लेकिन जो महान लोग हैं उसको महत्व समझते हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत, सारे सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सारे उपनिषद जो है गाय के समान है और उसका अमृत जो है वह गीता है, भगवत गीता है, और उसको दोहन कौन कर रहे हैं? गोपाल, कृष्ण गोपाल कर रहे हैं, और वत्स कौन, बछड़ा कौन है? वो अर्जुन है। तो आप देख सकते हैं कि युद्ध स्थल पे प्रवचन करना कितना मुश्किल बात है। तो जो उसका शंख था, शंख का बीज, जो युद्ध का बीगुल बज चुके थे, शंख का वादन हो चुका था, उसके बाद भगवान ने ज्ञान दिया है। तो अभी देख सकते हैं कि भगवद गीता कितना सुंदर ज्ञान का ग्रंथ है, और इस प्रकार से भगवान ने भागवत में सुंदर सुंदर ज्ञान दिया है जिसकी तुलना हम कभी कर ही नहीं सकते किसी वस्तु से। अभी तो सारा वैदिक ज्ञान तो भगवान से ही आ रहा है, हमने इसकी चर्चा पहले ही कर लिया था। और भगवान गीता में बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानते। जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, वह सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। और आप कभी विचार कीजिए कि जितने भी असंख्य जीव हैं अनादिकाल से जो कुछ भी इच्छा कर रहे हैं वह सब कुछ भगवान जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान का ज्ञान जो है वह काल के द्वारा और समय के द्वारा अपरिछिन्न है, अर्थात ऐसा कोई समय नहीं है कि भगवान का ज्ञान में कोई कमी आ रही हो और ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका ज्ञान भगवान को नहीं है। अपरिच्छिन्न मतलब कटता नहीं है भगवान का ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान पूरी तरह से अपरिच्छिन्न है, हमारा ज्ञान तो सर्वथा परिच्छिन्न है। हमें अगर पूछा जाए कि आज के ही समय कल आप क्या कर रहे थे तो बहुत मुश्किल होगा याद करना। तो हमें तो एक दिन की बात याद नहीं है और अनंत जन्मों की बात याद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अपने ही जन्म याद नहीं है, दूसरों के जन्म की क्या बात हम याद कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस जगत में धोखे खाते हैं। क्यों धोखे खाते हैं? अगर हमें ज्ञान हो कि कौन व्यक्ति किस नियत से काम करना चाहता है, क्यों आया है, तो हमें कौन धोखा दे सकता है। लेकिन हम धोखे खाते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। छठा जो पॉइंट है वह है वैराग्य का। इस संबंध में आप देख सकते हैं कि भगवान सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन अपने मित्र अर्जुन के लिए वे सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको इस जगत में मान सम्मान की कोई अपेक्षा है नहीं। इस संबंध में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई गरुड़ जी हैं, जैसे गरुड़ जी हैं वो हिमालय के या सुमेरु के पर्वत की तलहटी पे बैठे हैं और कौवा सुमेरु के चोटी पे बैठे। इसका अर्थ ये नहीं है कि कौवा है वह गरुड़ जी से श्रेष्ठ हो जाता है। तो भगवान की जो महत्ता है, भगवान की जो महानता है, वह उनकी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो तो अपने भक्त के प्रेम वश उनका रथ तक हांकने के लिए तैयार रहते हैं, उनको कोई मान की अपेक्षा नहीं है। और यहां तक कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो सबके चरणों को धुलने की सेवा जो है वह भगवान श्री कृष्ण ने ली। तो इस प्रकार से दिखाते हैं कि भगवान कितने वैरागी हैं, कितने विनीत हैं। तो भगवान कृष्ण के छह गुण जो हैं ये एक साथ उनमें रहते हैं। हो सकता है इस जगत में किसी के पास धन हो तो वैराग्य नहीं हो, प्रायः ऐसा देखा जाता है, आसक्त हो जाते हैं। धन हो तो बल नहीं हो, बल हो तो यश नहीं, यश नहीं यश है तो सौंदर्य नहीं है। तो ये गुण अगर किसी में हैं भी तो किंचित मात्रा में होते हैं और छह के छह एक साथ नहीं होते। लेकिन भगवान के पास ये छह के छह गुण हैं, एक साथ हैं, अतुलनीय मात्रा में हैं, असीमित मात्रा में, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को तथाकथित रूप से भगवान मानते हैं तो जरा इस मानक को सेट करके देखिए कि क्या वाकई उनके पास ये छह गुण हैं। और अगर नहीं है तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप एक गलत व्यक्ति को भगवान मान रहे हैं। भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, ये शास्त्रों का प्रमाण है। हम किसी को भी कुछ मान लेते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो हो जाता है। मान लीजिए हम लोग एक कुत्ते के गले में टांग के लिख दें कि वे भारत का प्रधानमंत्री है। आप समझिएगा, मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर कुत्ते के गले में टांग दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हो जाता है। वो कुत्ता ही रहेगा और कुत्ते की तरह ही कार्य करेगा। इसी प्रकार से इस जगत के एक सामान्य व्यक्ति या थोड़े बहुत कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को अगर हम भगवान कह देते हैं तो ये मूर्खता होगी। आजकल के समाज में ये बहुत प्रचलन चल रहा है कि तुम जिसको भगवान मानो वही भगवान हो जाता है। तो फिर तो आप कहेंगे कि भाई हम अपने जो बल्ब है उसी को सूर्य मान लेते हैं। नहीं, जितने भी जगत में शक्तिशाली जीव हैं या कुछ भी है उनकी शक्ति भगवान से ही आ रही है, भगवान का अंश मात्र है। तो इसलिए कौन भगवान है जानना बहुत जरूरी है। अब हम एक बहुत ही गोही विषय पर चर्चा करेंगे और वो ये है कि न सिर्फ भगवान भगवान है अपितु भगवान का हमसे सभी जीवात्माओं से एक विशिष्ट संबंध है। सनातन रूप से हम सभी भगवान के अंश हैं। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सभी जीवात्माएं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनकी सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जितनी भी जीवात्माएं हम सब लोग हैं, आत्मा के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं। इसका अर्थ है कि बद्धावस्था में भी हम भगवान के अंश हैं और जब हम मुक्त हो जाएंगे तब भी भगवान के अंश रहेंगे। जैसे अगर आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें ग्वाल बाल रहते हैं, गाय रहते हैं, राधा रानी रहती हैं, या पांडव इत्यादि रहते हैं, जल रहता है, उन सबको कृष्ण आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। और वो सर्व आकर्षक हैं क्यों, अभी हमने चर्चा किया, क्योंकि सारे के छह गुण उनके पास अतुलनीय मात्रा में रहते हैं। तो भगवान का धाम है जिसकी हमने चर्चा किया था, वहां पर सारे जीव सहज रूप से भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं, और भौतिक जगत अर्थात जो जीव हैं वो सहज रूप से कृष्ण के प्रति आकृष्ट नहीं है, लेकिन स्वरूपगत रूप से, मूलभूत रूप से सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं और उनके अंश हैं। तो भगवान से संबंध के से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हम संबंध की बात कर रहे हैं। प्रायः लोग किसी की पूजा करते हैं लेकिन उससे कोई प्रेम में संबंध स्थापित नहीं करते और ना होता है, लेकिन ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। पांच प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है निष्क्रिय रस में, इसे शांत रस कहते हैं, जैसे वृंदावन की भूमि, पेड़ पौधे, ये सब निष्क्रिय रूप में कृष्ण के प्रति या शांत रस में भगवान से जुड़ते हैं। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, इसे कहते हैं दास्य रस, जैसे चित्रक, पत्रक, ये सब भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। सखा रूप में भक्त हो सकता है, जैसे अर्जुन और जैसे श्रीदामा, सुदामा इत्यादि। माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे माता यशोदा, माता देवकी, वसुदेव, यह कृष्ण की इस प्रकार से माता पिता या वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। और दंपत्ति प्रेमी के रूप में, दंपत्ति या प्रेमी के रूप में वह भक्त हो सकता है, जैसे जो द्वारका की रानियां हैं वह भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं, यानी दाम्पत्य भाव में उनसे प्रेम कर रही हैं, करती हैं। और जो गोप कुमारियां हैं वृंदावन की, व्रज की, वह प्रेयसी के रूप में उनकी सेवा करती हैं। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सेवक ही हैं, लेकिन उन लोगों का संबंध अलग-अलग है। देखिए, जैसे अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था, लेकिन ये जो साख्य है, ये दोस्ती है, वह इस भौतिक जगत में जो प्राप्य मित्रता है उसमें बहुत अंतर है। इस जगत में हम अपनी मित्रता तभी करते हैं जब तक हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है, और अन्यथा हमारी मित्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन ये दिव्य मित्रता है, और यह तभी होता है जब भक्ति में परिपक्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, यानी कि जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है भगवान के प्रति, तब व्यक्ति इस संबंध का अनुभव भगवान कृष्ण से कर सकता है। लेकिन इस समय जो हमारा वर्तमान जीवन है, उस अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, और यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, और तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हर जीव के हृदय में शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण के प्रति एक विशिष्ट रस में प्रेम है। किसी का साक्य हो सकता है, किसी का दास्य होगा, किसी का वात्सल्य होगा, ऐसे करके ये थोपा नहीं जाता है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, तो क्रमशः इससे हमारे जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाता है। ये बहुत ही गुही है, अत्यंत गुही बात है, और कोई सिद्धांत को नहीं समझता अगर उसे परंपरा में ज्ञान प्राप्त न हो। ये बहुत बड़ी कृपा है अगर हमें ये बात समझ में आ जाए और इसको सुन करके हम भगवान के भजन में लग जाएं। जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान के चरणों में इस शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करें। उससे होगा क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं कुछ काम करूं तो उसे फायदा मालूम चले। जब भगवान कृष्ण के चरणों में इस प्रकार का प्रेम जागृत हो जाता है, या जितनी मात्रा में जागृत हो जाता है, तो भक्ति को की जाने वाली हर क्रिया जीव को अनंत सुख देती है। चाहे वो भगवान के बारे में सुनना हो, चाहे भगवान के बारे में बोलना हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसको ऐसे समझाया जाता है कि अगर हलवा है या साग है, हलवे में अगर चीनी नहीं हो तो देखने में अच्छा लगेगा लेकिन आस्वादनीय नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर साग में नमक नहीं हो तो देखने में अच्छा लगेगा लेकिन आस्वादनीय नहीं होगा। तो जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, उतनी मात्रा में भगवान की भक्ति की क्रियाएं जीव को अनंत सुख देते हैं। और ये अनंत सुख जब तक जीव को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हमने आज सीखा कि भगवान कौन है। भगवान वो व्यक्ति हैं जिनके पास छह गुण असीमित मात्रा में हैं और इसी कारण से वे सभी जीवों के प्रति सर्वाकर्षक हैं। और हमने ये सीखा कि भगवान से हर जीव के एक पांच संबंधों में से एक विशेष प्रकार का संबंध होता है और इसकी जागृति होने के बाद व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, अनंत समय के लिए सुखी हो जाएगा, भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। हरे कृष्णा।